उसकी जिंदगी थी। जब वो वकील बना तो अपने माँ पापा के साथ रहना उसने सालों पहले छोड़ दिया था। उसके डैड को उसका वकील बनना पसंद नहीं था। डैड चाहते थे कि वो पुश्तैनी बिजनेस संभाले। टकराव इतना बढ़ा कि ज्ञान अलग रहने लगा। उसे खाना बनाना नहीं आता था और सच कहें तो उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। बाहर का खाना, रेस्टोरेंट, कुक भी रखा, पर वहाँ हमेशा तेल मसाले, भारी खाना। सालों हो चुके थे उसे घर का सिंपल खाना खाए हुए। फिर अचानक न्यारा, उसके हाथ का बना खाना, बहुत साधारण, बहुत कम तेल, कोई दिखावा नहीं। और उसी दिन उसका पेट पहली बार सेट हुआ था। पेट सेट हुआ तो नींद आई, नींद आई तो दिमाग भी थोड़ा शांत हुआ। और इसी वजह से आज वो उसके साथ खड़ा था मॉल में, किचन का सामान लेते हुए, उसकी बातें सुनते हुए। वरना ज्ञान कपूर किसी की इतनी मर्जी कभी नहीं झेलता। उसे ये बात खल रही थी, मैं इसे क्यों झेल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसका बनाया खाना मेरे पेट को सूट करता है। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त दूर खड़ी एक औरत उसकी जिंदगी के बारे में भविष्य के सपने बुन रही थी। उसकी माँ और उसके डैड दोनों बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनकी बहू मिल गई है। उन्हें चैन मिला था ये सोचकर कि उनका बेटा, जो लड़कियों से दूर भागता था, आखिरकार किसी के साथ तो है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कितना गलत समझा जा रहा है और आगे चलकर ये गलतफहमी कितने बड़े तूफान की वजह बनेगी, ये अभी कोई नहीं जानता था। पर इतना तय था, ज्ञान कपूर की जिंदगी अब उस रास्ते पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होने वाला था। वो घर पहुंच चुकी थी। खाना खाने के बाद ज्ञान कपूर की माँ और उसके डैडी लॉन में टहल रहे थे। रात की हल्की ठंडक थी और मन में दिन की तस्वीरें घूम रही थीं। कुछ पल चुप्पी के बाद डैड ने ही बात छेड़ी, कैसी थी वो लड़की? फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, खूबसूरत तो थी? माँ तुरंत बोली, बहुत खूबसूरत थी। डैड रुक गए, सच? हाँ, माँ ने कहा, और दोनों साथ में किचन का सामान खरीद रहे थे। डैड की भौहें ऊपर उठ गईं। किचन का सामान? हाँ, माँ बोली, मैंने तो आपको बताया ही था, सुपरमार्केट में थे दोनों। डैड कुछ सोचने लगे। एक बात बताओ, उन्होंने धीरे से कहा, कहीं दोनों साथ तो नहीं रह रहे? माँ ने उनकी तरफ देखा, लड़कियां ऐसे ही थोड़े किचन का सामान खरीदती हैं, अगर ज्वेलरी शॉप में होती तो समझ आता, घर का सामान मतलब बात कुछ और ही है। मिस्टर कपूर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, एक बात कहूँ, मुझे तो तुम्हारे लड़के पर शक होने लगा था। मिसेस कपूर ने उसकी तरफ देखा, कैसा शक? यही कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है, मिसेस कपूर ने साफ कहा। लेकिन अगर वो किसी लड़की के साथ रह रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मुस्कुरा दिए। थोड़े दिन रुक जाओ, उन्होंने समझदारी से कहा, पूरा मामला सेटल होने दो, फिर बात करेंगे। मिसेस कपूर ने सिर हिलाया, और अगर वो लड़की उसे पसंद है तो शादी कर ले, बात तो आपकी ठीक है। दोनों हंस पड़े, किचन का सामान साथ में खरीद रहे हैं, पक्का कुछ तो है। असल में वो दोनों कुछ और ही सोच रहे थे, कि शायद ज्ञान कपूर किसी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है, और इस सोच से वे परेशान नहीं थे बल्कि खुश थे। आखिर ज्ञान कपूर अब 30-32 साल का हो चुका था, ना किसी अफेयर की खबर, ना किसी लड़की का जिक्र, जबकि उसकी उम्र के ज्यादातर लड़कों की शादियां हो चुकी थीं। आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे की जिंदगी में कोई तो है, और यही उम्मीद उन्हें सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। रात बहुत लंबी लग रही थी। इंदिरा अपने फ्लैट के बेड पर सीधा लेटा था, आंखें बंद थीं लेकिन नींद कहीं नहीं थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बाहर नहीं अंदर शोर मचाती है। आज आर्यन और सानवी की शादी तय हो चुकी थी, कल दोनों की शादी हो जानी थी। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो मिलने नहीं गया था, क्योंकि अगर जाता तो अपने चेहरे से कुछ भी छुपा नहीं पाता। अब क्या बचा है, ये सवाल बार बार उसके भीतर उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी उम्मीदें इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकती हैं। इंद्र सानवी को पसंद करता था, बहुत पहले से, बिना कहे बिना जताए। उसे लगा था वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। सानवी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके साथ बैठकर बात करना आसान था। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी और उसकी चुप्पी में भी सुकून होता था। कभी कभी इंद्र को लगता था कि सानवी उसे समझती है, शायद जरूरत से ज्यादा। लेकिन उसने शादी के लिए आर्यन को हाँ कह दी थी, और उसी एक हाँ ने इंद्र की पूरी दुनिया अचानक बहुत छोटी कर दी थी। शायद मैंने देर कर दी, वो सोचता है। वो जानता था आर्यन अच्छा इंसान है, सानवी उसके साथ खुश रह सकती है, और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अगर कोई गलत होता तो तो गुस्सा आता, अगर कोई जोर जबरदस्ती होती तो दर्द कम लगता, लेकिन यहाँ सब कुछ सही था, बस वो गलत जगह खड़ा था। छत की ओर देखते हुए उसकी आंखें भीग आईं। वो रोना नहीं चाहता था, वो कभी रोता भी नहीं था, लेकिन आज दिल बहुत भारी था। सानवी को खोने का दुख नहीं है, उसने खुद से कहा। दुख इस बात का है कि मैंने उसे कभी बताया ही नहीं। कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनमें कमी होती है, और कभी इसलिए क्योंकि उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। इंद्र ने करवट बदली। बाहर शहर सो रहा था और उसके अंदर एक पूरा रिश्ता खामोशी से टूट चुका था। सानवी आर्यन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही थी। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन उससे नफरत करता है, और उस नफरत की वजह भी वही थी। ये सब उसकी बहन की वजह से हुआ था। उसी की वजह से आर्यन को जय की कस्टडी खोई थी, और आर्यन की कंपनी में विक्रांत कपूरिया और जेसिका दोनों उसके सिर पर आ बैठे थे। कंपनी की हर बात में वो लोग बेवजह का दखल दे रहे थे। उसी कस्टडी को पाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तय हुई थी। विक्रांत ने आर्यन की बहन और बहनोई को उसी ने मारा था, और ऐसे लोगों के पास आर्यन अपने भांजे जय को नहीं छोड़ सकता था। प्लान बिल्कुल साफ था। कोर्ट मैरिज के बाद वे दोबारा कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि ये साबित किया जा सके कि आर्यन अब अकेला नहीं है। उसकी एक पत्नी है, उसके पास एक फैमिली है, और शायद इस शादी की वजह से जय की कस्टडी उसे मिल जाए। जो भी था, सब कुछ सानवी के भीतर था। रिया को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता था। रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसके हर सुख दुख की गवाह थी, हर राज जानती थी। सानवी के मम्मी पापा घर आ चुके थे, और इस वक्त उसकी मम्मी उस पर बहुत नाराज थी। इतनी बड़ी शादी है, उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा, और तुमने बस जरा सी मेहंदी लगवाई है। दुल्हन के कितने अरमान होते हैं पता है तुम्हें? सानवी चुप रही। शायद तुम्हारे अरमान नहीं होंगे, मम्मी ने तीखे स्वर में कहा, मगर मेरे तो हैं। उन्होंने सानवी को खूब डांटा। फिर कीर्ति और रिया से कहा, इसके हाथों और पैरों पर अच्छे से मेहंदी लगवाओ। सानवी बिना कुछ कहे वापस बैठ गई। वो जानती थी मम्मी के आगे उसकी एक भी नहीं चलने वाली। दिन भर उसे पार्लर घुमाया गया था, हर तैयारी करवाई गई थी। वो चुपचाप सब मानती जा रही थी, क्योंकि बात सच भी थी, उनके मम्मी पापा के लिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, उनके लिए ये उनकी बेटी की असली शादी थी। रिया ने उसके कान में धीरे से कहा, चुपचाप सब करती जा सानवी, बाद में सोचेंगे। मेहंदी लगते लगते सानवी की नजर अपने हाथ की रिंग पर गई, वही रिंग जो आर्यन ने उसे दी थी। वो जानती थी वो रिंग प्यार की निशानी नहीं थी, वो बस दिखावे के लिए थी, एक सबूत, कोर्ट के लिए, समाज के लिए। उस रिंग को देखते हुए सानवी के दिल में कुछ टूट सा गया। शादी की हर रस्म उसे एक कहानी की तरह लग रही थी, जिसमें वो किरदार तो थी लेकिन भावना नहीं। फिर भी वो बैठी रही, मेहंदी लगवाती रही, मुस्कुराती रही, क्योंकि ये शादी प्यार की नहीं जिम्मेदारी की थी, और इस जिम्मेदारी का बोझ सबसे ज्यादा उसी के कंधों पर था।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें।